बाल राम कथा चैप्टर 7 सोने का हिरण। सोने का हिरण मायावी था। जैसे ही राम को उसने अपनी ओर आते देखा, वे कुलाचे भरता हुआ आगे निकल गया। एक पल के लिए भी वह किसी जगह पर स्थिर नहीं रहता था। कभी झाड़ियों में छिप जाता, कभी बहुत तेज दौड़ने लगता। कई बार राम उसके बिल्कुल पास पहुंच जाते और ऐसा प्रतीत होता कि अब तो वे उसे पकड़ लेंगे, लेकिन अगले ही पल वह काफ़ी दूर भाग खड़ा होता। इस तरह वह भागता रहा और राम उसे पकड़ने का प्रयास करते रहे। इसी क्रम में राम अपनी कुटिया से बहुत दूर निकल गए। हिरण को जीवित पकड़ना राम को असंभव लगा। उन्होंने अपना विचार बदल लिया। उन्होंने धनुष उठाकर उस पर बाण चला दिया। निशाना अचूक था। बाण लगते ही हिरण धरती पर गिर पड़ा। अब उसने अपना मायावी रूप त्याग दिया। मायावी रूप में मारीच ने अपनी आवाज़ राम की तरह बना ली और जैसे ही बाण लगने से वह धरती पर गिरा, राम की आवाज़ में चिल्ला पड़ा, हा लक्ष्मण, हा सीते। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाण राम को लगा है और उन्हें सहायता की बहुत आवश्यकता है। मारीच ने राम को अपने मायावी जाल में उलझा लिया था। उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। अधिक देर तक वह जीवित भी नहीं रह सका। बाण के प्रहार से छटपटाते हुए उसने प्राण त्याग दिए। सब कुछ योजनाबद्ध ढंग से हो रहा था। रावण प्रसन्न था, विशेषकर मारीच की सफल भूमिका पर, जिसे उसने कुशलता पूर्वक निभाया था। अब उसे सीता का हरण आसान लग रहा था। रावण मन ही मन यह सोचकर खुश था कि वह सीता को उठा ले जाएगा और राम अपनी अंतिम सांसें लेंगे। आगे की योजना को कार्य रूप देने के लिए वह उद्यत हो गया। राम ने जब मारीच की चीख सुनी तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनकी आवाज़ में इस तरह पुकारने का उद्देश्य क्या है। उनके मस्तिष्क में मायावी मारीच की सारी योजना स्पष्ट हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि हिरण दूर दूर इसलिए भागता रहा जिससे कि वे कुटिया से काफ़ी दूर निकल जाएं। अब राम को षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना था, इसलिए वे तेज कदमों से कुटिया की ओर चल पड़े। थोड़ा भी विलंब अनिष्टकारी हो सकता था। मायावी हिरण की पुकार काफी तेज थी, जिसे सीता और लक्ष्मण ने भी स्पष्ट सुना था। राम की तरह लक्ष्मण भी रहस्य समझने में माहिर थे। कुछ अशुभ ना हो, इसलिए उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष को तैयार कर लिया। वे बहुत चौकस हो गए ताकि राक्षसों से षड्यंत्र को विफल कर सकें। उन्होंने यह भी तय कर लिया कि कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा अग्रज राम का निर्देश था। मायावी हिरण की पुकार की मंशा सीता नहीं समझ पाईं। वे घबरा गईं। उन्हें लगा कि उनके पति पर अवश्य कोई विपदा आन पड़ी है। वे दौड़कर लक्ष्मण के पास गईं। लक्ष्मण ने स्थिति भांप ली थी। अभी वे भाभी को कुछ समझाते कि इससे पहले ही वह बोल पड़ी, लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता अवश्य किसी संकट में फंस गए हैं। वे तुम्हें पुकार रहे हैं, जल्दी जाओ और उन्हें बचा लो। मुझे बहुत चिंता सता रही है। लक्ष्मण बोले, यह पुकार भ्राता राम की नहीं है। वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। जो आवाज़ आपके कानों में पड़ी है वह मायावी है। यह सब मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए राक्षसों का रचा हुआ षड्यंत्र है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल असुरक्षित हो जाएंगी। हे माते, आप बिल्कुल चिंता ना करें। भ्राता राम किसी संकट में नहीं है। वे अभी आ जाएंगे। सीता के कानों में पति की पुकार अभी तक गूंज रही थी। उन्हें लक्ष्मण की बात पर अत्यंत क्रोध आ गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लक्ष्मण इतने शांत और सहज क्यों बने बैठे हैं। राम की ऐसी कातर आवाज़ उन्हें विचलित क्यों नहीं कर रही। ऐसी घड़ी में अगर वह भाई की सहायता नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। लक्ष्मण के प्रति सीता का मन कलुषित हो गया। उन्हें लगा कि वे वास्तव में भाई के दुश्मन हैं। उन्हें सत्ता का लोभ है, जिसे हथियाने के लिए वे भाई के जीवन को भी दांव पर लगाने को तैयार हो गए हैं। उनसे रहा नहीं गया। क्रोध में बोली, लक्ष्मण, मैं समझती थी कि तुम अपने भाई के हितैषी हो, उनके अंगरक्षक हो, लेकिन यह मेरा भ्रम था। तुम्हारे हृदय में उनके लिए कोई मोह ममता नहीं है, तुम्हारे मन में पाप है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम दौड़कर उनकी सहायता के लिए जाते। जो कातर पुकार मैंने सुनी है उसे तुमने भी सुना है। मैं व्याकुल हो उठी हूँ, परंतु तुम बिल्कुल शांत हो, आखिर क्यों? सीता की बातें लक्ष्मण के हृदय पर हथौड़े की तरह चोट की तरह लगीं। वे अत्यंत आहत हो गए, परंतु उन्होंने पलटकर कुछ भी नहीं कहा। वे सीता की मनस्थिति अच्छी तरह समझ रहे थे, अतः उन्होंने संयम से काम लेना श्रेयस्कर समझा। उन्होंने बस इतना ही कहा, हे माते, मैं इसलिए व्याकुल नहीं हो रहा क्योंकि मैं राक्षसों के छल को समझ रहा हूँ। खर दूषण के मारे जाने के कारण राक्षस बौखला गए हैं, वे हमसे बदला लेना चाहते हैं। ये सब उनका षड्यंत्र है जिसमें वे हमें फंसाना चाहते हैं। इतना सब कुछ समझकर भी अगर मैं आपको छोड़कर चला गया तो कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे राम भैया बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सीता लक्ष्मण पर अत्यंत क्रोधित हो गईं। वे सोचने लगीं कि अगर लक्ष्मण की बात गलत निकल गई तो फिर क्या होगा। राम से विछोह की कल्पना मात्र से वे सर से पैर तक कांप गईं। वे बेचैन हो उठीं और बोली, लक्ष्मण, तुम अभी जाओ और मेरे पति को बचा लो। वे घोर संकट में हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। लक्ष्मण भाभी की आज्ञा मानने और भैया राम की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए विवश हो गए। सब कुछ जानते हुए भी उन्हें सीता की बात माननी पड़ी। वे निकल पड़े राम की खोज में। निकलने से पहले उन्होंने सीता को सादर प्रणाम किया। जो कुछ हो रहा था सब रावण के पक्ष में जा रहा था, वह तो इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। इधर लक्ष्मण कुटिया से बाहर निकले, उधर वे तपस्वी का वेश धारण कर कुटिया के बाहर आ पहुंचा। सीता ने उसका स्वागत किया। बदले में उसने सीता के रूप, संस्कार और गुणों की प्रशंसा की। सीता के बारे में जानने के बाद उसने अपने संबंध में उसे बताया। उसने कहा, हे रूप की रानी सीता, मैं लंकाधिपति रावण हूँ, राक्षसों का राजा हूँ, मैं आतंक का दूसरा नाम हूँ। लोग मेरे राम मात्र से कांप उठते हैं। तुम अपूर्व सुंदरी हो, मैं तुम्हें डराऊंगा नहीं, तुम चुपचाप मेरे साथ चली चलो। यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम्हें ले जाने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। वास्तव में मैं तुम्हें लंका की रानी बनाना चाहता हूँ। यहाँ जंगल में तुम्हारा जीवन अतिशय कष्ट में है, तुम लंका चलो और वहाँ आराम का जीवन जियो। सीता ने जिसे साधु समझा था वह तो राक्षस निकला। वे क्रोधित हो उठी, गरज पड़ी, तुम जो मंशा लेकर आए हो वह कभी पूरी नहीं होगी। मैं राम की धर्म पत्नी हूँ, तुम्हें उनके पराक्रम के बारे में पता नहीं है। तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राम महाबलशाली हैं, वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीता बोलती रहीं, लेकिन रावण ने वही किया जो उसने सोचा था। उसने सीता को जबरदस्ती खींचकर रथ में बैठा लिया। वे झटपटाती रहीं, हाथ पैर मारती रहीं, किंतु रावण के चंगुल से निकलना वह भी एक नारी के लिए सर्वदा असंभव था। वे चीखती चिल्लाती रहीं और सहायता के लिए जोर जोर से पुकारती रहीं, कभी राम को तो कभी लक्ष्मण को। इधर रावण अट्ठास करता हुआ रथ को तेजी से लंका की ओर बढ़ाए लिए चला जा रहा था। सीता असहाय थी। रास्ते में जो भी मिलता, चाहे वे पशु हो, पक्षी हो, पर्वत हो या कोई नदी, सबसे गुहार लगाती कि वे उनकी सहायता करें, वे उनके राम को उनकी स्थिति के बारे में बता दें। सहसा उनकी चीत्कार गिद्धराज जटायु के कानों में पड़ी। वे विचलित हो उठा। सीता माता अवश्य ही किसी संकट में हैं, मुझे तुरंत उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए, उसने अपने आप से कहा और ऊंची उड़ान भरते हुए उसने रावण के रथ पर ढाबा बोल दिया। उसने न केवल रथ को तोड़फोड़ डाला, बल्कि रावण को भी घायल कर दिया। एक पक्षी का ऐसा दुस्साहस पर रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने तत्काल उसके पंख काट डाले। जटायु की स्थिति अति दयनीय हो गई। वे उड़ने में बिल्कुल असमर्थ हो गया तथा धरती पर गिर पड़ा। सीता की असहाय दशा पर वह विलाप करता रहा। रथ टूट गया तो क्या, रावण की हिम्मत नहीं टूटी थी। उसने झट सीता को बाहों में उठा लिया और उड़कर लंका की ओर चल दिया। जटायु के कारण सीता को थोड़ी आशा बंधी थी, लेकिन उसके धरती पर गिरते ही वे फिर निराश हो गईं। अब उन्हें लगा कि उनकी सहायता केवल राम ही कर सकते हैं, लेकिन कोई उन्हें बताए तब तो। वे जहाँ भी थे सर्वथा सीता की स्थिति के बारे में अनभिज्ञ थे। सीता को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकने शुरू कर दिए। वहाँ पर उपस्थित वानरों ने भी आभूषण उठा लिए। यह देखकर सीता के मन में आशा जगी कि अब राम को उनके बारे में पता चल जाएगा। राम को यह भी मालूम हो जाएगा कि सीता किस रास्ते से गई हैं। राक्षसों का राजा रावण समझ नहीं पाया था कि आभूषण फेंकने के पीछे सीता का उद्देश्य क्या है। वह जल्दी ही लंका पहुंच गया। सोचा कि लंका के धन वैभव को देखकर सीता प्रभावित हो जाएंगी, लेकिन यह उसका भ्रम था। सीता तो बस राम की रट लगाए हुए थी। रावण उन्हें लेकर सीधा अपने अंतःपुर में चला गया। वहां राक्षसियों को आदेश दिया कि वे सीता को अपनी निगरानी में रखें। फिर वह बाहर चला गया। कुछ देर बाद वह पुनः वहां आया। सीता के पास आकर कड़क आवाज में बोला, क्या तुम्हें मेरी रानी बनना स्वीकार नहीं है? क्या तुम ऐसे ही रोती चिल्लाती रहोगी जीवन भर? हे सुंदरी, विलाप करना बंद करो। मैं तुम्हें विचार करने के लिए कि तुम क्या करना चाहोगी एक वर्ष का समय दे रहा हूँ। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, लेकिन एक बार फिर कह रहा हूँ, रोना धोना बंद करो, मेरी रानी बन जाओ और सुख का जीवन बिताओ। रावण की ये बात सीता को जले पर नमक छिड़कने के समान प्रतीत हो रही थी। वे एकदम बौखला उठे। उन्होंने रावण को खूब धिक्कारा, फिर अपने पति राम के पौरुष का गुणगान करने लगी। अपने चंगुल में फंसी सीता के मुख से राम की प्रशंसा रावण से सुनी नहीं गई। वह क्रुद्ध हो उठा और गरजते हुए बोला, राम का नाम लेना बंद करो, वह यहाँ नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मेरे हाथों ही हो सकती है, अतः मेरी बात मानो, मुझे अपना पति स्वीकार करो। तुम्हारा शेष जीवन मैं खुशियों से भर दूंगा, राम अब कुछ नहीं कर सकता। सीता ने रावण को फिर धिक्कारा। उन्होंने कहा, तू मेरे राम के पराक्रम को नहीं जानता। अरे, वे तो अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर देंगे। वे जब तक यहाँ नहीं आ जाते तब तक जो जी में आए बोल ले। पापी रावण, उनकी शक्ति तो देवतागण भी मानते हैं, फिर तू क्या चीज है? मेरा हरण कर तूने घोर पाप किया है। आने दे राम को, वे तुम्हारा अंत करके ही दम लेंगे। रावण सचमुच चिंता में पड़ गया। उसे सीता की बातों में सच्चाई दिखने लगी। सहसा यह भी उसके मस्तिष्क में कौंध गया कि खरदूषण जैसे शक्तिशाली राक्षसों को मारने वाला तो राम ही है, फिर उसकी शक्ति की परीक्षा क्या करनी। वे विचलित हो उठा। उसने तत्क्षण अपने कुछ महाशक्तिशाली राक्षसों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोगों को अभी अभी पंचवटी जाना है। वहाँ राम और लक्ष्मण रहते हैं, उनकी प्रत्येक गतिविधि पर निगरानी रखनी है। मुझे उन दोनों के बारे में सभी जानकारी मिलती रहनी चाहिए। और हाँ, जैसे ही उन्हें मारने का अवसर मिले मार डालो, अवसर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। राक्षसों को पंचवटी भेजकर रावण ने सबसे पहले सीता को रखने का स्थान बदला। वह उन्हें अंतःपुर से बाहर अशोक वाटिका में ले आया, जहाँ उन्हें वहाँ बंदी बनाकर रखा गया। राक्षस राक्षसियों को कड़ा पहरा देने का आदेश मिला। उन्हें रावण से यह भी निर्देश मिला कि वे सीता को केवल अपमानित करेंगे, उन्हें मानसिक पीड़ा देंगे, लेकिन शारीरिक कष्ट कदापि नहीं देंगे। अशोक वाटिका में सीता राक्षस राक्षसियों के बीच सहमी सी बैठी रहती थी, लेकिन राम का नाम लेने से उन्हें कोई नहीं रोक सका। वे राम का नाम रटती रहीं इस प्रतीक्षा में कि वे शीघ्र अतिशीघ्र आएंगे और अपनी सीता को बचाकर ले जाएंगे। सोने की लंका में दिन बिताना उन्हें अत्यंत दूभर लग रहा था, लेकिन वे असहाय थीं।